नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डिवोर्स पॉइजन न्यू एंड अपडेटेड एडिशन, डॉक्टर रिचर्ड ए वार्षक की तलाक के बाद के पारिवारिक संघर्ष पर केंद्रित व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है। इसका विषय केवल तलाक का दुख नहीं, बल्कि वह स्थिति है जिसमें एक अभिभावक बच्चे के सामने दूसरे अभिभावक को लगातार नीचा दिखाता है, उससे दूरी बनवाता है या उसे पक्ष चुनने के दबाव में डालता है। वार्षक इस प्रक्रिया को पेरेंटल एलियनेशन से जुड़ी पारिवारिक गतिशीलता के रूप में देखते हैं। पुस्तक का उद्देश्य दोषारोपण बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को वयस्कों के संघर्ष का माध्यम बनने से बचाना है। लेखक उस प्रचलित सलाह पर प्रश्न उठाते हैं कि लक्षित अभिभावक को बस चुप रहना चाहिए, इसके बदले वे संयमित, सक्रिय और बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित प्रतिक्रिया की जरूरत बताते हैं। पुस्तक माता पिता के साथ साथ सौतेले अभिभावकों, दादा दादी, चिकित्सकों और कानूनी पेशेवरों के लिए भी उपयोगी संदर्भ प्रस्तुत करती है, विशेषकर तब जब संपर्क से इनकार, झूठे आरोप, कटु संवाद और निष्ठा के संघर्ष परिवार को प्रभावित कर रहे हो। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बैड माउथिंग को साधारण शिकायत नहीं, बच्चे पर भावनात्मक दबाव के रूप में समझना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि तलाक के बाद पूर्व साथी के बारे में कभी कभार नकारात्मक बात कहना और बच्चे को व्यवस्थित ढंग से दूसरे अभिभावक के विरुद्ध मोड़ना एक जैसी बातें नहीं है। जब बच्चा बार बार अपमानजनक टिप्पणियां सुनता है, पुराने संबंधों की एकतरफा व्याख्या पाता है या उसे यह संकेत मिलता है कि दूसरे अभिभावक से प्रेम करना विश्वासघात है, तब वह निष्ठा के संघर्ष में फंस सकता है। वार्षक के अनुसार, बच्चे की निर्भरता उसे उस अभिभावक की भावनाओं के प्रति अत्यधिक सतर्क बना सकती है जिसके साथ वह अधिक समय बिताता है, इसलिए वह अपनी स्वतंत्र राय के बजाय सुरक्षा और स्वीकार्यता के लिए अनुकूल राय अपनाने लगता है। पुस्तक इस प्रक्रिया को पहचानने पर जोर देती है, क्योंकि बाहरी रूप से बच्चा अपने शब्दों में बोलता हुआ दिख सकता है, जबकि उसके विचारों पर वयस्क संघर्ष का प्रभाव हो सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य हर असहमति को एलियनेशन कहना नहीं है। असली चिंता तब है जब बच्चे के रिश्ते, स्मृतियां और भावनाएं लगातार इस तरह ढाली जाएं कि एक अभिभावक पूरी तरह अच्छा और दूसरा पूरी तरह बुरा दिखाई दे। यह सरलीकरण बच्चे की भावनात्मक जटिलता और दोनों संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, चुप रहने की सलाह के बजाय संतुलित और सक्रिय प्रतिक्रिया की आवश्यकता। वार्षक उस आम धारणा की आलोचना करते हैं कि बदनामी का सबसे अच्छा उत्तर केवल उसे अनदेखा करना है। इस सलाह के पीछे उचित चिंता होती है कि पलटकर हमला करने से बच्चा और अधिक तनाव में आएगा, लेकिन पुस्तक का तर्क है कि निष्क्रियता यदि लंबे समय तक चलती रहे तो बच्चे के सामने झूठे या विकृत संदेशों को बिना चुनौती के स्थापित होने दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्षित अभिभावक भी दूसरे की बुराई शुरू कर दे। लेखक की दिशा इसके उलट है। प्रतिक्रिया को बच्चे की जरूरतों, शांत व्यवहार और संबंध की निरंतरता पर आधारित होना चाहिए। अभिभावक को अपनी पीड़ा बच्चे पर नहीं डालनी चाहिए, न उसे जासूसी करानी चाहिए, न उसे वफादारी का प्रमाण देने को कहना चाहिए। अधिक उपयोगी प्रतिक्रिया विश्वसनीय उपस्थिति, नियमित स्नेह, सीमाओं का सम्मान और बच्चे की कठिन भावनाओं को सुनने में हो सकती है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि तनाव में माता पिता अपनी ऐसी प्रतिक्रियाएं पहचाने जो अनजाने में दूरी बढ़ाती हैं, जैसे अत्यधिक सफाई देना, निराशा में पीछे हट जाना या बच्चे से तुरंत समर्थन मांगना। सक्रियता का मतलब संघर्ष जीतना नहीं, बल्कि बच्चे को वयस्क विवाद से बचाते हुए संबंध के लिए सुरक्षित स्थान बनाए रखना है। तीसरा, बच्चे को पक्ष चुनने के दबाव से मुक्त रखना और उसकी सहानुभूति बचाना। डिवोर्स पॉइजन का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष बच्चे की आंतरिक दुनिया पर ध्यान देता है। तलाक के संघर्ष में बच्चे से प्रत्यक्ष रूप से पूछा जा सकता है कि वह किसके साथ रहना चाहता है, या परोक्ष रूप से उसे यह महसूस कराया जा सकता है कि एक अभिभावक के प्रति लगाव दूसरे को चोट पहुंचाएगा। वार्षक के ढांचे में यह दबाव बच्चे को ऐसी भूमिका देता है जो उसकी नहीं है। वह न न्यायाधीश है, न संदेशवाहक, न किसी वयस्क की भावनात्मक देखभाल करने वाला व्यक्ति। पुस्तक बच्चों और किशोरों को दोनों अभिभावकों के प्रति जटिल भावनाएं रखने की अनुमति देने की जरूरत रेखांकित करती है। कोई अभिभावक गलतियां कर सकता है, फिर भी बच्चे का उससे लगाव वास्तविक हो सकता है। यही समझ काले सफेद सोच के विरुद्ध सुरक्षा बनती है। बच्चे को यह अनुभव होना चाहिए कि वह बिना अपराध बोध के दोनों घरों, दोनों रिश्तों और अपनी निजी भावनाओं के बारे में बात कर सकता है। यह दृष्टि बच्चे को माता पिता के विवाद का समाधानकर्ता बनाने के बजाय उसकी उम्र के अनुरूप स्थान देती है। सहानुभूति का अर्थ बच्चे से किसी वयस्क के व्यवहार को उचित ठहरवाना नहीं है। इसका अर्थ है कि उसे मनुष्यों और रिश्तों को एकतरफा लेबलों से परे देखने की क्षमता मिले। इस तरह पुस्तक संबंध बचाने को भावनात्मक स्वतंत्रता से जोड़ती है। चौथा, झूठे आरोप, संपर्क प्रतिरोध और विकृत पारिवारिक इतिहास को सावधानी से संभालना। पुस्तक उन कठिन स्थितियों पर भी ध्यान देती है जिनमें बच्चे का किसी अभिभावक से संपर्क कम हो जाता है या वह मिलने से प्रतिरोध करने लगता है। ऐसे मामलों में कोई सरल निष्कर्ष सुरक्षित नहीं है। बच्चे की दूरी के पीछे वास्तविक भय, पिछले अनुभव, माता पिता की अपनी कमियां, तीखा संघर्ष या दूसरे अभिभावक का प्रभाव कई कारण हो सकते हैं। फिर भी वार्षक यह चेतावनी देते हैं कि आरोपों और पारिवारिक इतिहास की एकतरफा व्याख्या को बिना जांचे अंतिम सत्य मान लेना बच्चे के हित में नहीं है। विशेष रूप से गंभीर आरोपों को जिम्मेदारी और उचित पेशेवर जांच के साथ लेना चाहिए, न कि उन्हें अभिभावकीय प्रतिशोध का हथियार बनाना चाहिए। पुस्तक का व्यापक संदेश यह है कि बच्चे के कथन को सम्मानपूर्वक सुना जाए, लेकिन उसे वयस्कों के संघर्ष से अलग संदर्भ में समझा जाए। लक्षित अभिभावक के लिए यह स्थिति अत्यंत उत्तेजक हो सकती है, क्योंकि उस पर अपनी पहचान और अपने प्रेम को साबित करने का दबाव होता है। लेखक की व्यावहारिक दिशा संयम रखने, संवाद को बच्चे पर केंद्रित रखने और जल्दबाजी में प्रत्यारोपों की श्रृंखला न शुरू करने की ओर है। इस विषय की उपयोगिता इसी में है कि यह संपर्क प्रतिरोध को केवल अवज्ञा या केवल प्रमाणित एलियनेशन मानने के बजाय गंभीर और संदर्भ आधारित पारिवारिक समस्या के रूप में देखने को कहती है। अंत में थेरेपिस्ट, वकील और फैमिली कोर्ट के साथ बच्चे केंद्रित सहयोग की चुनौती वार्षिक पुस्तक को केवल घरेलू संवाद की सलाह तक सीमित नहीं रखते। वे मानते हैं कि गंभीर पारिवारिक संघर्ष में थेरेपिस्ट, वकील और फैमिली कोर्ट की भूमिका बच्चे के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इसलिए सहायता लेने का अर्थ केवल किसी पेशेवर का नाम जोड़ना नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना है जो उच्च संघर्ष तलाक, बच्चे की निष्ठा की उलझन और दोनों अभिभावकों के संबंध के महत्व को समझता हो। पुस्तक पेशेवर सहायता को बच्चे की भलाई के साधन के रूप में रखती है, न कि दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रमाण जुटाने की मशीन के रूप में। कानूनी प्रक्रिया अक्सर पक्षों को अपनी बात कठोर और विरोधी भाषा में रखने के लिए प्रेरित करती है। इसके बीच लेखक का जोर इस बात पर है कि अभिभावक अपने आचरण, संचार और चिंताओं को यथासंभव स्पष्ट, तथ्यपरक और बच्चे के हित से जुड़ा रखें। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि पारिवारिक अदालतें संबंधों की पूरी भावनात्मक कहानी को आसानी से हल नहीं कर सकती। पुस्तक यह भी स्वीकार करती है कि पेशेवर हस्तक्षेप तभी सार्थक है जब वह बच्चे को माता पिता के युद्ध का उपकरण न बनाए। इस प्रकार इसका व्यावहारिक ढांचा निजी भावनाओं, सह अभिभावक व्यवस्था और संस्थागत निर्णयों के बीच संतुलन खोजता है। निष्कर्ष में, डिवोर्स पॉइजन मुख्यतः उन माता पिताओं के लिए है जो तलाक के बाद बच्चे के सामने लगातार बदनामी, पक्ष चुनने के दबाव, संपर्क में गिरावट या दूसरे अभिभावक के प्रति कठोर शत्रुता का सामना कर रहे हैं। यह सौतेले अभिभावकों, दादा दादी और उन थेरेपिस्टों तथा वकीलों के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें पारिवारिक संघर्ष के बीच बच्चे के हित को समझना होता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पीड़ित अभिभावक को केवल असहाय बने रहने या जवाबी बदनामी करने, इन दो चरम विकल्पों तक सीमित नहीं करती। यह संबंध बनाए रखने, बच्चे को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने और अपनी तनावपूर्ण प्रतिक्रियाओं को सुधारने की दिशा देती है। बौद्धिक रूप से इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह बच्चे के प्रतिरोध या नकारात्मकता को सतही ढंग से नहीं पढ़ती, बल्कि निष्ठा, निर्भरता, पारिवारिक कथाओं और वयस्क संघर्ष के प्रभावों से जोड़ती है। समान श्रेणी की कई तलाक संबंधी पुस्तकों की तुलना में वार्षिक की विशिष्टता यह है कि वे बैड माउथिंग और पेरेंटल एलियनेशन से जुड़ी स्थितियों को अपना केंद्रीय विषय बनाते हैं। साथ ही वे निष्क्रिय रहने की लोकप्रिय सलाह को चुनौती देते हुए सक्रियता की वकालत करते हैं, पर उसे प्रतिशोध नहीं बनाते। पाठक को इसे किसी व्यक्तिगत मामले का अंतिम निदान या कानूनी विकल्प नहीं मानना चाहिए। इसकी सबसे उपयोगी भूमिका एक सोच समझकर बच्चे केंद्रित प्रतिक्रिया के लिए ढांचा देना है, विशेषकर तब जब परिवार में संवाद और भरोसा कमजोर पड़ चुका हो। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डॉक्टर रिचर्ड वार्षिक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।